वो कल तक एक बंधन लग रहा था कि नृसिंह जयंती पर भगवान नृसिंह के आविर्भाव की कथा बोलनी चाहिए। अब इसके बाद तो भगवान की स्तुति चल रही है और हम लोग इत्मिलान से इसमें चलेंगे। कोई अब घबराहट की बात नहीं है, जैसा समय रहेगा उसके अनुसार हम लोग कवर करेंगे। आज स्तुति के श्लोक में ब्रह्मा जी की स्तुति को हम लोग सुनेंगे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक 40, सप्तम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक 40। इसको भी बोलना पड़ता है इसलिए कि ये कैमरा लगाए हैं तो दूसरे लोग भी ग्रंथ देखना चाहते हैं। मैं किसी दिन 5वें श्लोक की आवृत्ति कराया, वो 6ठे अध्याय का होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो अपना भागवत और गीता में अंतर नहीं कर पाए, तो फोन करके कहते हम हर अध्याय का 5वां श्लोक ढूंढने का प्रयास किया, मिला नहीं। इसी से मैं श्लोक का संख्या 2 बार बोल देता हूं, एक बार में ना कोई कच करेगा तो फिर समझ लेगा, क्योंकि कैमरा लगने से बाहर वाले कुछ लोग सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए और उत्साह से बोलिए। नतः अस्मि अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते अव्ययात्मने। श्री ब्रह्मोवाच नतस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये नतस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। श्री ब्रह्मोवाच नतस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य विश्वस्य सर्गस्थिति संजमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने न तस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने सब लोग साथ में बोलिए न तस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने फिर से एक बार साथ में न तस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने फिर से साथ में सब लोग बोलिए साथ में सब लोग न तस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्र विरजाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणहि स्वलीलया संदधते व्ययात्मने श्री ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा जी ने कहा नतः नतमस्तक अस्मि हूँ अनंताय अनंत भगवान को दुरंत जिनका अंत ढूंढ पाना कठिन है शक्तये विभिन्न शक्तियों से युक्त विचित्र वीरजाय नाना प्रकार के पराक्रम से युक्त पवित्र कर्मणे जिनके कर्म का फल नहीं होता चाहे बुरा ही कर्म क्यों न करे वे भौतिक गुण से दूषित नहीं होते विश्वस्य विश्व की सर्ग सृष्टि स्थिति पालन संयमान तथा संघार गुण ही भौतिक गुणों से स्वलीलया आसानी से संदधते संपन्न करता है अव्यय आत्मने जिनके व्यक्तित्व का ह्रास नहीं होता अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की हे प्रभु आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद और विश्वस्त मित्र थे, किंतु उन्हें शापवश असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही एक असुर परिवार में प्रहलाद महाराज को महाभागवत का आचरण प्रदर्शित करने के लिए जन्म धारण करना पड़ा, और तब भगवान को उसी असुर का वध करने के लिए नृसिंह देव का रूप धारण करना पड़ा, जिसने भगवान की इच्छा से असुर कुल में जन्म लिया था। अतएव ऐसा कौन होगा जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सके, उनके कार्यकलापों की कौन कहे, उनके दासों के कार्यकलापों तक को समझना कठिन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 23:39 में कहा गया है, कार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझौ। भगवान के दासों के कार्यकलापों को कोई नहीं जान सकता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है, यह कौन समझ सकता है कि कृष्ण किस तरह संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं। भगवान को दुरंत शक्ति कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्य विधि को नहीं समझ सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल हम लोग सुने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह अवतरित हुए। प्रहलाद के विषय में आप जानते हैं कि परम शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, जन्म से ही भाव स्तर के भक्ति को प्राप्त हैं, और सदैव वे कृष्ण भावना में तल्लीन रहते हैं। और ऐसे भक्त को जो अपना खास पुत्र है हिरण्यकश्यप उद्यत हो गया, तलवार लेकर के तैयार हो गया सीधे गर्दन काटने के लिए, बहुत आक्षेप किया, बहुत गाली दिया, अंततः उनको मारने के लिए उद्यत था। और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए वह खंभे से ही प्रकट हो गए। और मैं समय के अभाव में फिर से उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना समझिए कि भगवान नृसिंह बहुत क्रोध में थे। उनका वर्णन किया गया है कि आंख एकदम तप रहा था क्रोध के मारे, जैसे प्रतप्त सोना हो वैसे दिख रहा था, और उनका मुंह बहुत विकराल था, भयंकर था, मुंह खोले हुए थे, जबड़ा ऐसे बहुत फैलाए थे, मुंह इतना खोले थे कि लगता था कि एकदम कान तक मुंह खुला हुआ है, और उसमें जीभ लपलपा रहे, तो जीभ एकदम छुरदार छुरी के समान, जैसे जिसका शान धराया हुआ है, तेज धार है, वैसा दिख रहा था, और कान ऊपर था, बहुत क्रोध में थे। हिरण्यकश्यप को पकड़े और उसको वैसे चीर दिए जैसे गरुण जी किसी सांप को चीर देते हैं। यद्यपि हिरण्यकश्यप का त्वचा इतना कठोर था कि इंद्र का वज्र भी उस पर खरोच नहीं ला सकता था, लेकिन भगवान चिर दिए, उसका वध कर दिए। और हिरण्यकश्यपु के जो साथी थे, अनुयायी थे, फॉलोअर थे, तो वे बड़ा क्रोध में हुए और भगवान के तरफ दौड़े और भगवान हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिए, एक साइड कर दिए, उसके आंत के माला को पहन लिए। और जो दूसरे उसके अनुयायी थे उनको मारने लगे। तो नृसिंह भगवान के कई एक भुजा थी, ऐसा लिखा गया है कि सैकड़ों भुजा का ग्रुप तस्तुम था, समूह था, एक एक जगह कई एक भुजा है और ऐसे सैकड़ों कम ग्रुप था। और उनके हाथ में कठोर नख था और इसके साथ गदा इत्यादि आयुध भी धारण किए थे। तो किसी को तो ऐसे हाथ से ही मार दिए, खत्म, किसी को गदा से मार दिए, किसी को तलवार से मार दिए और किसी को नख से मार दिए, सब खत्म हो गए। अब उनके सामने कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे बहुत क्रोध में थे। उनके क्रोध का एक अनुमान कर सकते हैं कि उनके दृष्टि से ये सूर्य इत्यादि का प्रकाश फीका हो गया। और जब वे दहाड़ मारे, गर्जना किए, तो जो हाथी हैं दिग्गज, वे चिघाड़ मारने लगे। दिग्गज समझते हैं दिग्ध गज, ये पृथ्वी को बनाए हैं भगवान, तो इसको स्थिर रखने के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं। पर्वत को भूधर कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ऑफिस है, खास करके प्रशासनिक लोगों का ऑफिस है, तो डीएम इत्यादि के ऑफिस पर पूरा जिले का नक्शा रहता है, कहीं से कुछ करने के लिए सुविधा हो। मुख्यमंत्री के टेबल पर पूरे प्रांत का नक्शा रहता है, कई एक पेपर रहते हैं, तो पेपर उड़ न जाए, इधर उधर गिर न जाए, तो शीशा का पेपर वेट रखते हैं ना, उसको दबा देते हैं तो पेपर स्थिर रहता है। तो उसी तरह ये पृथ्वी कहीं डोल न जाए, कहीं इधर उधर न चला जाए, तो इसको स्थिर रखने के लिए कई एक व्यवस्था है। जगह जगह पर्वत बना दिया गया है और खास करके अस्थाई व्यवस्था है, चारों तरफ चार, चारों दिशा में चार हाथी रखे गए, उनको दिग्गज कहा जाता है। बहुत बलवान होते हैं, बहुत शक्तिशाली। लेकिन नृसिंह देव जब गर्जना किए तो भय के मारे आवाज करने लगे वे हाथी लोग, सब हाथी लोग बहुत क्रोध में थे। और सांस लिए तो समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र में तूफान आने की बात तो दूर है, ये पर्वत उड़ने लगे, ऐसा क्रोध था। और थोड़ा चले तो पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। आवाज का वर्णन पहले ही सुन चुके हैं कि इतना जोर से आवाज की, अटहास किए कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और ब्रह्मा इत्यादि भयभीत हो गए, कहीं प्रलय का समय तो नहीं आ गया। एंड सबको मार करके भगवान हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु के सिंहासन के बैठने के पीछे दो सिद्धांत दिया जाता है। अब हिरण्यकश्यपु को पराजित किए, वो राजा तब पराजित हो गया, तो अब भाई पराजित जो किया उसका अधिकार हो जाता है सिंहासन पर, स्वाभाविक है। किसी राजा को हरा दिए तो उसी का उच्चीज हो गया ना। तो एक तो सिद्धांत यह है कि विजय का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके सिंहासन पर ही बैठ करके। और दूसरी बात यह है कि चाहे हिरण्यकश्यपु की जो दुर्दशा हुई है तो भगवान का अपना ही ना। तो भगवान यह भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान से जिसका एक बार संबंध जुड़ गया तो भगवान उसको नहीं त्यागते, उसको अपना मानते ही। भगवान की स्थिति है कि बड़े बड़े ऋषि लोग मंत्र से पवित्र करके आसन देते हैं, लेकिन उस पर भी बैठने में भगवान संकोच करते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु का आसन को अपने भक्त का आसन है तो अपना मान करके बिना बुलाए स्वयं उस पर बैठ गए। तो उनके आकृति को देख करके देवता लोग बहुत भयभीत थे। देवता तो आकाश में आकर के भगवान के लीला को देख रहे थे, लेकिन उनके क्रोध को देख करके कि कहीं और किसी दूसरे का संहार न कर दे। हिरण्यकश्यपु का तो वध किए इतने क्रोध में किसी पर फिर हाथ चला दे थप्पड़, तो फिर यह दुनिया का नाश ही न कर दे क्रोध में। तो उनको क्रोध शांत करना चाहते थे। जैसे मैं कहा कि ऊपर देवता लोग थे तो स्त्रियां फूल बरसाना प्रारंभ की। सबसे पहले स्त्रियों को सामने लाए, स्त्रियां दैन्य से युक्त होती हैं कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए। वो लोग प्रसन्न भी थे, हिरण्यकश्यपु के वध से इतना प्रसन्न थे कि देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, फिर प्रसन्न थे। लेकिन अब भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए ये देवताओं के जितने ग्रुप हैं सब है नजदीक आए, बहुत नजदीक नहीं, पहले जितना दूर थे उससे नजदीक आए, नाति दूर चरा, अब बहुत दूर नहीं थे, एकदम नजदीक भी नहीं थे, दूर थे लेकिन बहुत दूर नहीं थे। और वे आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के स्तुति को दिया गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नतः अस्मि, अनंताय नतः अस्मि, हम भगवान अनंत के नतमस्तक हैं। भगवान अनंत के चरणों में नतमस्तक है, उनके समक्ष मैं नतमस्तक हूं। वे भगवान को संबोधित कर रहे अनंत। अनंत का क्या अर्थ है? अनंत जो देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, उसको कहा जाएगा अनंत। तो इस शब्द को समझ लेना चाहिए, देश काल और वस्तु के दृष्टि से जो अपरिच्छिन्न है। छिन्न मतलब काट देना। वे दूसरे की क्या स्थिति है? देश के परिच्छिन्न है। अब वृंदावन है, वृंदावन के बाहर नहीं है ना, एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं, वो इस स्थान पर है लेकिन केवल इसी स्थान पर ही नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भगवान से बाहर हो, तो इसको कहा जाएगा कि देश से परिच्छिन्न नहीं। देश मतलब प्लेस, स्थान, ये संस्कृत का शब्द है, और देश मतलब स्थान, प्लेस। ऐसा है कोई प्लेस यहां भगवान न हो? वो सारे स्थान उनके अंतर्गत है, तो इसलिए वे देश के परिच्छिन्न नहीं और काल के परिच्छिन्न नहीं, काल से परिच्छिन्न नहीं। हम लोग हैं तो 21वीं शताब्दी में है, 22वीं शताब्दी में तो नहीं रहेंगे ना, और उधर 19वीं शताब्दी में भी नहीं होंगे, 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन भगवान तो किसी कोई ऐसा समय नहीं है कि उस समय भगवान नहीं है। तो काल परिच्छिन्न कर रहा है दूसरे को ना, एक समय में है दूसरे समय में नहीं, तो इसको काल का परिच्छिन्नता कहते हैं। और इसी तरह वस्तु की परिच्छिन्नता है, कोई भी वस्तु भगवान को ढक नहीं सकता। हम लोग तो छत के परिच्छिन्न है, लेकिन भगवान किसी वस्तु के परिच्छिन्न नहीं है। सारी वस्तु भगवान के अंतर्गत है, भगवान से बाहर कोई भी वस्तु नहीं। सबसे पहले संबोधित कर रहे हैं अनंताय, आप अनंत हैं, आपको मैं नतमस्तक हूं। तो अनंत का अर्थ समझ रहे हैं ना, जो काल के दृष्टि से, देश के दृष्टि से और वस्तु के दृष्टि से अपरिच्छिन्न, वह है अनंत। और दुरंत शक्त नतः अस्मि, जिनकी शक्तियां दुरंत है, जिसका अंत पाना कठिन है, जिनके शक्तियों का कोई अंत नहीं पा सकता, तो उसको कहा जाएगा दुरंत। वो कह रहे हैं कि आपको नमस्कार है। विचित्र विरजाय, भगवान का प्रभाव पराक्रम विचित्र है, आश्चर्यमय है, उनको नमस्कार। पवित्र कर्म रे, जिनके कवि कर्म लीला पवित्र हैं, विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण स्वलीलया संदधते, जो सारे संसार के सृष्टि पालन और संहार अपने गुणों से करते हैं, तो उनको नमस्कार है। और अव्ययात्मने, जिनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई ह्रास नहीं होता है, ऐसे आपको नमस्कार है। तो अब वो एक एक शब्द पर विचार करना होगा। वो कह रहे हैं कि विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण स्वलीलया संददते अव्ययात्मने, भगवान खेल खेल में, लीला कहते हैं खेल को, जैसे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा समय मिला तो खेल चालू कर देते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता है, वे आनंद के लिए सीधे खेल रहे हैं, उनको एक खेलने में आनंद है। तो उसी तरह भगवान अपने प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण विश्व की रचना, केवल रचना ही नहीं पालन, और केवल पालन ही नहीं संहार, खेल खेल में करते, और फिर भी अव्ययात्मने, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ह्रास नहीं होता, कोई विकृति नहीं आती। यह बहुत विचित्र बात है। आप संसार के लोगों को देखें तो एक थोड़ी सी सृष्टि कर दें कुछ तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। कोई दो चार पुत्र पुत्री उत्पन्न कर दे तो ऐसा नहीं है कि तटस्थ रह सकता, तो राग से भर जाता, अभिनिवेश छा जाता, उसके सुख दुख से वो प्रभावित होने लगता है। समझ रहे हैं ना, कोई पुत्र के सुख दुख से वो प्रभावित होगा, क्योंकि सृष्टि किया है। हम लोग क्या कहते हैं कि जन्मौला के बड़ा मोह, ये स्वाभाविक है, सबके लिए भाषा का अंतर है। जिसको जन्म दिए हैं उससे बहुत मोह होता है। अरे एक वृक्ष लगा देते हैं तो उसके प्रति मोह हो जाता है, और बेटा बेटी उत्पन्न कर दिए, सृष्टि कर दिए, भगवान की शक्ति से सृष्टि किए, निमित्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें आसक्त होते हैं, भगवान को उपदेश देना पड़ता है। और नभी स्वंग पुत्रदार गृहेषु, भक्ति करना है तो उसके मानसिक आसक्ति का त्याग करो, अभी संग का त्याग करो। ये संग को समझना चाहिए। बेटा को नौकरी लग गई, बाप खुश हो जाता है, और बेटा डिसमिस हो गया तो बाप दुखी हो जाएगा। छोटी छोटी चीज के लिए चित्त पर असर आता रहता है। लेकिन भगवान का व्यक्तित्व के अव्यय आत्म ने, अरे सृष्टि कर रहे हैं और विचित्र सृष्टि है। देखिए भगवान की जो सृष्टि है तो कोई कारखाने जैसा नहीं है। कोई कारखाना में वस्तु बन रहा है तो साचा तैयार है, एक ढंग का मिलेगा। आप किसी चिमनी पर जाए, भट्ठा पर जाए, ईटा का तो एक ढंग का ईटा मिलता है। लेकिन भगवान की ऐसी सृष्टि है कि इस सृष्टि में दो चीज पूरा पूरा एक जैसा नहीं है। जैसे आदमी का देखते हैं ना, पहचान कर लेते हैं, और नहीं तो फिंगरप्रिंट से पहचान कर लेते हैं ना, अलग अलग है तब ना पहचान कर लेते हैं। आप किसी वृक्ष के पत्ता को देखिए, देखिए मैंने ठीक ठीक विश्लेषण कीजिए तो कोई भी पत्ता है थोड़ा थोड़ा उसका अपना इंडिविजुअलिटी है। दो पत्ता एकदम एक जैसा नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ अंतर दिख जाएगा। तो भगवान के सृष्टि की विशेषता देख रहे हैं ना, और फैक्ट्री का माल है तो एक जैसा सब निकल रहा है। तो विचित्र सृष्टि किए हैं और सृष्टि का संहार कर देते हैं, उन पर कोई विक्रिया नहीं है। जैसे बच्चे हैं तो खेल में रचना करते हैं, घर बना दिए तो जितना बनाने में आनंद है उतना ही ढहाने में भी आनंद है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अब जो सयाने लोग हैं वो एक घर बना दिए तो घर को सजाने में अब उनका चित लग जाता है, और कहीं उस पर कोई ढहाने की बात आ गई तब तो प्राण ही निकलने लगेगा। अरे घर की बात तो दूर है, कार है, कार पर थोड़ा सा खरोच लग जाता है तो प्रभावित हो जाते हैं। हमारे संन्यास मेंटर हैं परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज, एक घटना सुनाते हैं। कोई नाइजीरिया में जा रहे थे और कहीं पुल पार करना था, और तब तक एक माता जी थी तो नई कार से जा रही थी। अब कार को कोई टच कर दिया, थोड़ा सा उस पर खरोच आ गया, वो कार रो करके अब वो करने के तुम हमको धक्का मारा, कार ने हम पर खरोच मार दिया, वो एकदम तादात्म करके अब वो भूल गई, पूरा जाम लग गया। तो हम यह कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि छोटी छोटी बात से व्यक्ति का चित्त प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। इस अर्थ में अव्यात्मा, यह दूसरा भी अर्थ है। अरे भाई हमारे पास शक्ति है, लोग बहुत उदार बनते हैं, पैसा दक्षिणा देते हैं, लेकिन कई एक लोगों को दिए तो कुछ स्टॉक कम हो जाएगा ना, कुछ शक्ति कम हो जाती है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की विशेषता हम लोग एक दिन सुने थे कि सर्वान ददाति सुहृदो भजतो विकामन आत्मानम अपि, जो भी भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे मनोरथ को भी पूर्ण करते हैं, अपने को भी दे देते हैं। अरे अकेले हैं तो कई एक लोगों को कैसे दे देंगे। कह रहे हैं कि उपचया पचयो न जस्य, क्योंकि उनमें ह्रास और वृद्धि नहीं है। तो किसी दृष्टि से देखें तो भगवान अव्यय आत्मा, उनको नमस्कार कर रहे हैं। और इच्छा हो रही है कि शब्दों की व्याख्या करें। देखिए श्रीमद् भागवतम है, कुछ कुछ श्लोक ठीक से समझ जाएंगे तो गाइडलाइन जैसा हो जाता है, उसी के आधार पर और बातें भी समझ में आने लगती है। और कह रहे हैं कि विचित्र विरजाय, उनका भी पराक्रम विचित्र है, अद्भुत कर्म है उनका, विचित्र पराक्रम है। देखिए तत्कालिक, देखिए तत्कालिक घटना देखिए, तो जो अपना प्रिय सेवक हैं, एकदम सेवा में है, उनको साप दिला करके बैकुंठ से बाहर असुर जोनी में। अच्छा, उनको असुर जोनी में दिए तो वही अपने प्रिय भक्त का जन्म दे देना, प्रहलाद को असुर जोनी में भेज देना, विचित्र कर्म है, ये समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, वो भी किए तो अपने प्रिय भक्त के ही बाप को ही मार देना, तो कई एक ढंग से उनका जो कार्य है, प्रभाव है, वो विचित्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पवित्र कर्मणे, भगवान की विशेषता दे रहे हैं कि भगवान के कर्म पवित्र हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आपको देखने में लगेगा कि भगवान कोई गर्हित कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपवित्र नहीं है। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का संहार किए, खून का सरोवर बना दिए, नदी बह गई, लेकिन यात्रा पृष्ठों पर कर्म कोई कर्म का प्रभाव नहीं आया। वे खून का सरोवर बनाए, लेकिन उसी में जो व्यक्ति स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान के कोई भी कर्म है वे पवित्र है, पवित्र कर्माणी। वो भगवान के दृष्टि से ही नहीं, वे इतने पवित्र हैं कि श्रवण मात्रिल शोधकानी, केवल उन कर्मों का श्रवण किया जाए तो हम पवित्र हो जाए, श्रवण करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, इतने भगवान के कर्म पवित्र। और कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा मन कैसे शुद्ध होगा। अरे सहज उपाय है, भगवान के कर्म का श्रवण कीजिए, मन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि विचित्र वीरजाय, भगवान का अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव को तत्काल जोड़ सकते हैं कि पवित्र कर्मणे, केवल उनके कर्म का कोई श्रवण करे तो श्रवण करने से ही पवित्र हो जाएगा। वे कैसे पवित्र हो जाएगा, श्रवण करने से क्या प्रोसेस है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो भगवान हृदय में जा करके उसको शुद्ध कर देते हैं। श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधनोति सुहित सता। भगवान भक्तों के उपकारी हैं, हितैषी हैं, तो श्रृण्वताम स्व कथा, जो व्यक्ति उनकी कथा का श्रवण करता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, उनका स्वरूप ही है कि उनका कथा कीर्तन पुण्य का विधान करने वाला है। तो हृदयस्थ, वो भगवान हृदय में पहुंच करके और उसके हृदय की जो दुर्वासना है, गंदगी है, काम क्रोध है, उसको भी शांत कर देते, शुद्ध कर देते। तो यह भगवान के कथा श्रवण का प्रभाव। अभी कोई प्रश्न करेगा कि कैसे वह हृदय में चले जाते, श्रीमद् भागवतम ही कहता है कि कोई कथा का श्रवण कीर्तन प्रारंभ करता है तो भगवान उसके कान में, कान से हृदय में पहुंच जाते हैं। नात दीर्घेण विसते हृदय, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान के कथा का श्रवण करता है तो नाति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगता है, और विसते हृदय, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम। कान से प्रवेश करके और अपने भक्तों के भाव सरोरुहम हृदय कमल को धुनते समलम कृष्ण फलस्य यथाफरत। वहां जो भी दुर्वासना है, समल है, गंदगी है, तो उसको समाप्त कर देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि सलिलस्य यथा फरत, जैसे जल की गंदगी को फरद काल शुद्ध कर देता। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि बरसात में पानी गंदा हो जाता है, नदी का पानी है, सरोवर का पानी है, तो गंदा हो जाता है। किसी को पानी को पीना है तो शुद्ध करना चाहता है, शुद्ध करने की अनेक विधि है। स्कूल में कोई एक विधि पढ़ाई जाती है शुद्ध करने के लिए, और जैसे एक विधि है कि बरसात का पानी है उसको घड़ा में ला करके रख दीजिए, स्थिर कर दीजिए, पानी शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा ना, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो उसी तरह मन को शुद्ध करने के लिए भी विधि है, लेकिन जैसे शरद काल शुद्ध करता है और दूसरे विधि से शुद्ध करते हैं, उसमें अंतर है। जैसे घड़ा में पानी लाए रख दे, धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको हिला दीजिए, अब उसमें कलछुल भी डाल दिए, चम्मच डाल दिए, अब उतने में फिर वो गंदा हो जाएगा ना। लेकिन शरत काल के आगमन पर सरोवर का पानी शुद्ध, नदी का पानी शुद्ध, अब वो गंदा होने वाला नहीं है। हम लोगों को तो प्रैक्टिकल अनुभव है, हम लोगों का छात्रावास गंगा जी के तट पर था, तो बरसात के दिन में तो इतना माटी को सीढ़ी पर निकालते निकालते कुछ समय लगता था, लेकिन अब वो शरद काल आया तो पानी बिल्कुल स्वच्छ। अब लड़के ऊपर से छत से कूदे या वृक्ष से कूदे, कितना भी खेल रहे, पानी गंदा होने वाला नहीं है। तो उसी तरह कि कई एक विधि है, कोई योग का साधना किया तो वो सब है विधि का, उस पद्धति की शक्ति सीमित है, बहुत कम लोग उसका आचरण कर पाएंगे, बहुत कम लोगों का मन शुद्ध होगा, और वो अभी आत्यंतिक शुद्धि नहीं होगी। ऐसा लिखा गया है कि अपक्व योगिनाम चित्तम गुणजुग यथा, चित्त थोड़े देर के लिए शुद्ध हुआ है लेकिन विषय से संसर्ग होते ही फिर वो चंचल हो जाता है। लेकिन जो भक्ति जो करता है, भगवान के कथा का श्रवण करता है, तो उसका चित्त भगवान वैसे शुद्ध कर देते हैं जैसे शरद ऋतु जल को शुद्ध कर देता है, मतलब फिर वो गंदा होने को नहीं है। तो यह विधि है, भगवान के कथा का श्रवण का प्रभाव होता है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम। तो भगवान के अपने भक्त हैं और उनके चित्त को भगवान वैसे शुद्ध कर देते हैं जैसे शरद काल सरोवर के नदी के पानी को शुद्ध कर देता है। और केवल शुद्ध ही नहीं करते हैं, भगवान तो अब शुद्ध किए हृदय को भक्त भक्ति करने लगा, उसकी भक्ति बढ़ गई तो वही डेरा जमा देते हैं, वहां से निकलते नहीं। ऐसा नहीं है कि शुद्ध करके निकल गए। इसी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंध जे ग्रंथ कर्ण विवरे श्रुतिवात नीतम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके चरण कमल के गंध को श्रुतिवात नीतम, गंध कैसे प्राप्त हो रहा है वेद शास्त्र से, तो उसको अपने कान से सूंघ रहा है, साहित्य की भाषा है। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंध जे ग्रंथ कर्ण विवरे, भगवान के चरण कमल के गंध को कैसे सूंघ रहा है कान से, और कैसे वो गंध प्राप्त है, श्रुतिवात नीतम, जैसे कहीं दूर पर भी फुलवारी है, फूल है, तो हवा से उसका गंध आ जाता है। तो भगवान तो दूर हैं, लेकिन उनके गुण तो शास्त्र में है और सुनता है, और पराभक्ति से उनके चरण को ग्रहण कर लिया तो ना पैस नाथ हृदयाम्बुरुहात स्वपुंसा, ऐसे भक्तों के हृदय से वे निकलते ही नहीं है, उसी में डेरा जमा देते हैं। अरे भाई क्यों भगवान डेरा जमाते हैं? तो उनको आनंद आता है और अपने भक्त के अधीनता को वे प्रदर्शित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही एक श्लोक है कि उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लिया है, जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो गया है और भक्ति भावना से भगवान को पुकार दिया, अविरत मेधयो अविरत भावनयो बहुत, ये भक्ति की विशेषता है कि इसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। जो ठीक ठीक साधना में लगे हुए हैं तो उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। तो कह रहे हैं कि अविरत मेधितया भावनयो बहुत, और ऐसे भावना से वो पुकार दिया। उसके पहले का एक गुण और है कि जिसका चित्त की कामना समाप्त हो गई, जिसके चित्त की कामना समाप्त हो गई है, चित्त की कामना समाप्त होने का अर्थ है कि उसमें चित्त शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें अब इच्छा नहीं है, इच्छा का प्ररोह नहीं है। और कह रहे हैं कि अपहत सकलेषणा मलात्मनि, जिसके सकल एषणा, खास करके पुत्र की एषणा, धन की एषणा, लोक की एषणा, ये बहुत प्रसिद्ध है। एषणा मतलब इच्छा, कोई भी व्यक्ति धन चाहता है, अपना फॉलोअर चाहता है, जस चाहता है। तो कह रहे हैं कि अपहत सकलेषणा अमलात्मनि, अब ये एषणाओं का त्याग हो गया तो पवित्र मन हो गया, मन पवित्र हो गया, और ऐसे मन में अविरत मेधित भावनयो बहुत, जो भक्ति निरंतर बढ़ रही है, जो भावना निरंतर बढ़ रही है, उस भावना से भगवान को कोई पुकार दिया, भक्त पुकार दिया, तो निजबसगत्व मात्मनोयम न सरत छिद्रवद अक्षर सताम ही। तो भगवान उसके हृदय से वैसे नहीं निकलते हैं जैसे आकाश नहीं निकलता। देखिए कहीं जल है तो जल को खाली कर देते हैं, कहीं जल है खाली कर देंगे ना, कहीं हवा है उसको भी खाली कर देंगे, लेकिन कोई है ऐसा बुद्धिमान या कुशल कि आकाश को खाली कर दे? समझ रहे हैं वे, कहीं जल है तो उसको खाली किया जा सकता है, ये हवा को भी खाली कर देते हैं, भैकुम बना देते हैं, लेकिन आकाश को खाली नहीं कर सकते ना, किसी स्थान से आकाश को निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अपहत सकलेषणात्मा, जिसके एषणा समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, तो मन शुद्ध हो गया और ऐसे मन में भगवान को बुला लिया तो भगवान उस स्थान से वैसे नहीं निकलते हैं जैसे आकाश नहीं निकलता है। भाई क्यों ऐसा भगवान करते हैं? वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शित करते हैं कि भक्त के अधीन है, ये दिखाने के लिए, उसके हृदय से निकलते ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करते हुए उनके गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, और उसमें एक गुण कह रहे हैं पवित्र कर्मणे, भगवान के जो कर्म है तो श्रवण मात्रेण शोधकानी, केवल उसका कोई व्यक्ति श्रवण करे तो इसी से वह शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के बाद शिव जी आए, और शिव जी भी दूर से ही कह रहे हैं कि कोप कालो युगान्तस्ते हतोयम असुरोल्पक तत्सुतम पाहि उपसुतम भक्तम भक्तवत्सल। शिव जी को कोई भय नहीं था, लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि अरे असमय में क्यों क्रोध कर दिए? आपको तो जब सृष्टि का अंत करना होता है तो वह समय है क्रोध करने का, और वो भी आप डायरेक्ट तो नहीं करते हैं, क्रोध तो हम करते हैं, हम आपके अंश हैं और हमारे द्वारा सृष्टि का अंत करा देते हैं, तो इस समय आप क्यों क्रोध कर दिए, क्या जरूरत पड़ गई? ये सृष्टि का अंत करना है क्या? अभी तो टाइम नहीं हुआ है, और वो भी तो आपके संकेत से हम कर देंगे, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कोप कालो युगान्तस्ते, तो मानो भगवान कहे कि सृष्टि का अंत करने के लिए नहीं, ये भक्त की रक्षा करने के लिए, असुर का अंत करने के लिए। और शिव जी कह रहे हैं कि अल्प कह, ये तो बहुत छोटा सा कार्य है। अब ये अच्छा मान लीजिए कि इसी के लिए आप अवतरित हुए, क्रोध किए, तो काम तो पूरा हो गया ना। तत्सुतम पाहि उपसुतम भक्तम ते भक्तवत्सल, तो अब ये क्रोध शांत कीजिए। जब भक्त के रक्षा के लिए ही आप अवतरित हुए हैं, क्रोध किए हैं, तब क्रोध को शांत कीजिए, भक्तों को आप उनकी रक्षा कीजिए, खास करके प्रहलाद की रक्षा कीजिए, यह समय आपके क्रोध का नहीं। और शिव जी भगवान के अंश हैं और यह जिम्मेवारी उनकी है, और शिव जी कह रहे हैं कि हमारा ही जिम्मेवारी है, आपकी जरूरत नहीं। तो इस प्रकार शिव जी स्तुति कर रहे हैं, तो और भी देवताओं का ग्रुप आ रहा है और अपने अपने कष्ट निवारण का उल्लेख करते हुए तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कई एक ग्रुप है, 17 श्लोकों में स्तुति है देवताओं की, लेकिन हमें कंफ्यूजन है समय का, आप लोग ठीक से निर्धारित करके, ये मधु श्रेष्ठ बोले कि हाँ 1:30 से 3 का समय है, 2:30 बजे से उधर सेवा है किचन में। अच्छा ठीक है, तो कल से हम लोग 1:30 से 3। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब स्थिरता है, खास करके जो ब्रह्मा जी की स्तुति है बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है, पवित्र कर्मणे। ब्रह्मा जी जिस रूप में कह रहे हैं तो बहुत भक्तों को आश्वासन के विषय है, भगवान के वार्ता को सुनने से ही हम पवित्र हो जाएंगे, ये अद्भुत प्रभाव है भगवान के लीला का। ये कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई भगवान की अनंत शक्ति है और स्वलीलया अपने खेल खेल के लिए, आनंद के लिए सृष्टि करते हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर भी तो कुछ उद्देश्य होगा। मानते हैं कि एकदम आनंद के लिए है, लेकिन क्या एकदम कोई उद्देश्य नहीं है? कोई सेकेंडरी उद्देश्य भी होगा ना, कि पवित्र कर्म है, भगवान जो भी लीला कर रहे हैं अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, ये जरूर है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो लोक के कल्याण के लिए कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो करके लोगों को आनंदित दिए, लेकिन भविष्य के लिए भी व्यवस्था बना करके गए। तमो नया तरिन तरिष्यन्ति इत्यगात स्वपद मिश्वर, इस पार सारे पृथ्वी को अपने जस से भर दिए। जस से भरने के पीछे क्या कारण था? कि भविष्य के लोग भी इसका श्रवण करके, कीर्तन करके माया बंधन को पार कर जाएंगे। देवता लोग कह रहे हैं कि संत लोग आपके चरण कमल के, आपके जस का आश्रय लेकर के भव समुद्र को पार कर जाते हैं और नौका वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। इस संसार में किसी को नदी पार करना है तो नौका पर चढ़ करके पार हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे को पार करना हो तब तो नौका उधर से कोई लाएगा तब ना। नदी पार करने में समस्या हो जाती है। कई एक बार हम लोग देखे हैं कि एक ग्रुप नाव लेकर के चला गया, अब दूसरा ग्रुप है तो बैठा है कि उधर से कोई आवे नाव लेकर के आएगा तब हम लोग पार करेंगे। कई एक बार हम लोगों को भी ऐसे करना पड़ा है। लेकिन संत लोग परंपरा छोड़ करके जाते हैं। अरे नाव का उदाहरण दिया गया, भगवान का जो जस है यही नौका है, तो इसको लेकर के तो जाते नहीं है, तो निधाय नौका को छोड़ करके खुद ही पार कर जाते हैं। तो इस नाव का अवलंबन करके कोई भी भवबंधन को पार कर सकता है, राग द्वेष से ऊपर हो सकता है, माया मोह से ऊपर हो सकता है, काम क्रोध से ऊपर हो सकता है। और भगवान के जस से अपने आप में पूरा सक्षम है। कभी कभी ब्रह्मचारियों के मन में निराशा की भावना आ जाती है, वे यत्न कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी निराश हो जाते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा है, काम क्रोध का वेग आ रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के जस के श्रवण कीर्तन इतने सशक्त हैं कि वे शुद्ध कर देते हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं कि इसी का आश्रय लेते हैं, और कुछ सारे भक्त हैं कि दुरंत शक्त है, भगवान की शक्ति अनंत है, तो डायरेक्ट भगवान पर ही अपना भार छोड़ देते हैं। एक श्लोक है वृंदावन महिमामृत का, उसमें कह रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतह निबद्ध। भक्त कह रहा है कि हमारा जो मन है तो सैकड़ों सैकड़ों दृढ़ दुर्वासना से बंधा हुआ है। अब मजबूत रस्सी से किसी चीज को बांध दीजिए तो वहीं पड़ा रहेगा। तो कह रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतह निबद्ध। ये दुर्वासना का जो रज्जु है रस्सी है, तो इसके दो विशेषता दे रहे हैं कि सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है। अब कहीं आसक्ति हो गई तो वहां से निकलता नहीं है, बहुत दृढ़ है रस्सी है, और एक बंधन नहीं है, रज्जु सतैर निबद्ध। अरे एक बंधन होता एक रस्सी तो कोई काट भी देता, सैकड़ों सैकड़ों रस्सी से बंधा हुआ। तो करें कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम, लेकिन कह रहे हैं कि आकृष्ट सर्वत कृष्ण स्वबलेन कृष्ण आकृष्ट सर्वत स्वबलेन कृष्ण, हे कृष्ण आप अपने बल से जहां जहां बंधन है सबसे खींच लाइए। तो दुरंत शक्ति भगवान के तो अनंत शक्ति है, अब उनके लिए कोई बंधन मजबूत नहीं है, वो किसी बंधन को तोड़ सकते हैं। तो भी वहां से खींच करके क्या करें, वृंदावने विहरत सहराधयात, अब वृंदावन में विहार करते हैं राधा रानी के साथ, वृंदावनम विहरत सहराधयात, ऐसे आप सविधम कुरु मानसम ते पादारविंद सविधम कुरु मानसम, हमारे मन को अपने चरणों के नजदीक ला दीजिए। तो भगवान के जस श्रवण अपने आप में सक्षम है, हमारे मन को शुद्ध कर देगा, और भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान सक्रिय हो करके हमारे मन को अपने चरणों में खींच लेते हैं, क्योंकि दुरंत शक्त है, और भगवान की शक्ति का कोई अंत नहीं पा सकता, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के गुणों का उल्लेख करते हुए उनको नमस्कार कर रहे हैं, शिव जी नमस्कार कर रहे हैं, इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, और भी देवताओं का जो ग्रुप है सब नमस्कार कर रहा है। तो इन बातों को हम लोग आगे जैसा अवसर मिलेगा सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।